नमस्कार, मैं हूं नितिन कश्यप और आप सुन रहे हैं ज्योतिष इन हिंदी पॉडकास्ट। जिन लोगों ने पहली बार हमें ज्वाइन किया है उन्हें मैं बता दूं कि ये पॉडकास्ट किस बारे में है। अगर आपकी ज्योतिष में रुचि है, आप इस विषय को पढ़ना चाहते हैं, इसे समझना चाहते हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ही उम्दा जगह है। इसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ एनरोल करने के लिए यू हैव टू विजिट आवर वेबसाइट www.astrolifesutras.com। हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है एस्ट्रो लाइफ सूत्रास, आप वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आएगा। यदि आपको ये अच्छा लगे तो फॉलो करना मत भूलिएगा, जिससे कि हमारे इसी तरह के और शो आपको रेगुलर मिलते रहें। अब और विलंब नहीं करते हैं, आरंभ करते हैं आज की यात्रा।
लगन का मालिक कुंडली से भाग्य तक देखते हैं। ज्योतिष एस्ट्रो लाइफ सूत्रास।
जय श्री राम। दोस्तों, आज एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जिसका मैरिड लाइफ में जितना इम्पॉर्टेंट रोल है उतना ही उसके बारे में कम डिस्कशन होता है सोशली, और वो है सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी। शास्त्रों के अनुसार हमें अपने जीवन साथी के साथ ही शारीरिक संबंध बनाने की छूट दी गई है, या कहा गया है कि वो हमारा पार्टनर होना चाहिए इस चीज़ में, और उसी के द्वारा हमारी जनरेशन आगे बढ़नी चाहिए। पर अब ये विषय इतना सरल नहीं रहा है। आज के समय में अगर सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी हस्बैंड वाइफ के बीच में ना हो तो सोशली वो इस चीज़ को एडमिट करते हैं, और कई केसेस में तो डाइवोर्स होता भी देखा गया है इस वजह से, तो इसको नकारा नहीं जा सकता। तो कुंडली में इसके बारे में कैसे देखें कि आपके लाइफ पार्टनर में या आप में सेक्सुअल अर्ज कैसी है। कई लोगों में सेक्सुअल अर्ज ज़्यादा होती है, तो वो उसे चाहिए कि उसके लाइफ पार्टनर की कुंडली में भी वो ऐसे योग देखे जहाँ जिस वजह से दोनों सेटिस्फाई हो सकें, दोनों अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से खुश रहें। अगर एक में ये अर्ज ज़्यादा है और दूसरे में अर्ज बहुत कम है, उस स्थिति में काफ़ी तनाव देखा गया है। मेडिकल साइंस तो ये भी कहता है कि अगर सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी पार्टनर के बीच में नहीं है तो उसका इमोशनल लेवल पर भी इम्पैक्ट आता है और दोनों कनेक्ट नहीं कर पाते। इस तरह देखें तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है और इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। पहले इस बारे में पॉडकास्ट बनाते हुए मुझे लग रहा था कि क्या ये विषय पे मुझे बात करनी चाहिए, क्या ज़रूरत है, छोड़ो। लेकिन सच कहूँ तो जब क्लाइंट आते हैं तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय हो जाता है, पर्टिकुलरली जब कोई फॉरेन से आ रहा होता है या यू नो मेट्रोपॉलिटन सिटी से आते हैं, तो वहाँ पे ये विषय अब आजकल काफ़ी आम हो गया है। तो चर्चा करनी ज़रूरी भी है और फ़ायदेमंद भी हो सकता है। इस पॉडकास्ट के बाद किसी को फ़ायदा हो जाए अपना पार्टनर चुनने में। तो अब इसे देखते कैसे, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में वीनस जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपके रोमांस को, आपकी बॉन्डिंग को। तो शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है, चाहे मेल चार्ट हो चाहे फीमेल। कई लोगों का ये मानना है कि शुक्र पत्नी का कारक है। ये केवल पत्नी का कारक नहीं है, ये रोमांस का भी कारक है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। तो उसको देखना होता है, उसके साथ किन की युति है, वो ग्रह किस राशि में है, शुक्र किस भाव में है। इन सब के प्रभाव के द्वारा आप जान सकते हैं कि व्यक्ति की अर्ज कैसी रहेगी, इस उसका दिमाग इस तरफ कैसा रहेगा। नो डाउट लग्नेश का हर एक चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि अगर हम आपकी अर्ज की बात कर रहे हैं तो आपका लग्न तो इम्पॉर्टेंट है ही, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो लग्न इम्पॉर्टेंट हुआ, वीनस इम्पॉर्टेंट हुआ, एट्थ हाउस इम्पॉर्टेंट हुआ, क्योंकि ये रिलेशन को अभी हमारा समाज इतना शायद ओपन नहीं हुआ है कि इस रिलेशन को ओपनली एक्सेप्ट किया जाए या एग्जिबिट किया जाए, तो वो चीज़ें नहीं है। तो अष्टम भाव की भी महत्ता बढ़ जाती है। इसके अलावा पंचम भाव आपकी बुद्धि का है, आप किस तरह की सोच रखते हैं, आपका दिमाग किस दिशा में जाता है, वो भी हमें इसी से देखना चाहिए, पंचम भाव से। बारवा घर पर्टिकुलरली सेक्सुअल बेड प्लेजर को दिखाता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी बारवा घर महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छा, अब कौन सी राशियां हैं जो इस अर्ज को बढ़ाती हैं और कौन सी राशियां हैं जो इस भूख को या इस काम इच्छाओं को कम कर देती हैं। देखिए मिथुन राशि बहुत महत्वपूर्ण राशि हो जाती है जब आप सेक्सुअल डिजायर की बात करते हैं। मिथुन शब्द ही बना है मैथुन से, तो इसमें कपल को दर्शाया गया है। तो इस राशि में किस प्रकार के ग्रह बैठे हैं या इस राशि में शुक्र बैठा है क्या, मैं आपको एक खास बात बताता हूँ, शायद आपने ना सुनी हो। ये वराह मिहिर ने अपनी किताबों में लिखा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, कि शुक्र कन्या में ज़्यादा बेहतर है मिथुन से। उनका यह मानना है कि मिथुन में शुक्र होने पर आपका प्रेम बदलता रहता है। आज आप किसी और पे आसक्त हैं, थोड़े समय बाद आप किसी और की तरफ, आपका दिमाग चला जाता है या टिल्ट चला जाता है। अब आप उसे कितना रोक पाते हैं, अपने आप पे कितना संयम रख पाते हैं, ये निर्भर करता है आपके लगन पर, आपके सूर्य पर। अन्यथा मिथुन में बैठा शुक्र कहीं ना कहीं पैशनेट बनाता है, आर्टिस्टिक टेंडेंसी देता है, पॉजिटिव साइड भी है उसकी, लेकिन एक पार्टनर के साथ बहुत लंबी अवधि तक रहने में परेशानी क्रिएट करता है। इसी तरह वृश्चिक राशि इसी अर्ज को रिप्रेजेंट करती है, पैशनेट बनाती है। लेकिन इस राशि की एक खास बात है, जितना ज़्यादा प्यार करती है उतने ही इंतहा से, उतनी ही इंटेंसिटी से ये नफरत भी करती है। वृश्चिक राशि ना दबे हुए इमोशन को रिप्रेजेंट करती है, तो शायद यही कारण है कि सेक्सुअल जो रिलेशनशिप है वो क्योंकि ओपनली सबके सामने डिस्कस नहीं होते हैं, तो इसको भी वृश्चिक राशि के द्वारा देखा जाता है कि अगर शुक्र वृश्चिक राशि में, तो ये थोड़ा आपकी कैसे कहूँ कि काम इच्छाओं को रिप्रेजेंट करता है और उसमें उतार चढ़ाव को रिप्रेजेंट करता है, अनयूजुअल एक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तुला राशि कालपुरुष की सातवीं राशि है, इसमें शुक्र का बैठना अच्छा है। आप एक्सपेक्ट करते हैं अपने लाइफ पार्टनर से कि वो एक्सप्रेसिव हो, आपके सामने इमोशनली आपको अपने आप को रखे, और वहाँ पर भी फिजिकल कंपेटिबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट इशू हो जाता है चेक करने के लिए। इसके अलावा जो दो जलीय राशि है कर्क और मीन, ये दोनों राशियों की भी इम्पॉर्टेंट भूमिका है। मैंने जितने भी अभी तक भाव या राशि बोले हैं ये अर्ज को बढ़ाने वाले हैं। तो यदि आपका शुक्र यहाँ पर है और उसका कोई संबंध लगन से है या लग्नेश से है, तो स्वाभाविक रूप से आप में काम इच्छाएं ज़्यादा होगी। तो कर्क और मीन में क्या होता है कि आप इमोशनल ज़्यादा होते हैं, आप भावुक ज़्यादा होते हैं, और जब भावनाएं जिसमें ज़्यादा होती है तो बहकने की संभावना भी उसमें ज़्यादा होती है, प्रैक्टिकलिटी थोड़ी कम होती है कर्क में भी और मीन में भी। हालांकि ये उतनी ही जल्दी अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं जितनी जल्दी ये इन्वॉल्व होते हैं। तो कर्क और मीन, इन दोनों को देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनमें किस प्रकार के ग्रह बैठे हैं। अब इसी शुक्र की युति अगर मंगल से हो तो ये तो जग जाहिर है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि अरे शुक्र मंगल की युति है, तो भाई ये तो सेक्सुअल अर्ज को बढ़ा देती है, बंदा रिलेशनशिप से बाहर चला जाता है, अफेयर हो जाते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। सी, ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये कि ये दोनों की युति किस राशि में हो रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने कहा मिथुन है, वृश्चिक है, तुला है, कर्क है, मीन है, इन राशियों में प्रभाव थोड़ा ज़्यादा देते हैं ये युति, उस तरफ ध्यान ज़्यादा बढ़ाती है। और सेक्सुअल अर्ज ज़्यादा होने का कतई ये मतलब नहीं है कि आप अपने शादीशुदा ज़िंदगी से बाहर पार्टनर की तलाश करेंगे। हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर के चार्ट में भी यही कॉम्बिनेशन हो और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सुकून से जी रहे हो। शायद यही कारण है कि वैवाहिक जीवन के लिए मांगलिक योग देखा जाता है कि दोनों की कुंडली में होना चाहिए। क्यों भाई दोनों की कुंडली में होना चाहिए? क्योंकि अगर दोनों की कुंडली में है तो अगर एक के ऊपर प्रभाव आएगा तो दूसरा भी उससे प्रभावित होगा, राइट? तो इसी प्रकार अगर दूसरे के चार्ट में भी इससे मिलता जुलता योग है और फिजिकल कंपेटिबिलिटी है तो भटकने की संभावनाएँ कम हो जाती। अब बात करते हैं भटकाव देता कौन है, जब हम भटकाव पर आ ही गए हैं। तो देखिए राहु कारक है इस चीज़ का कि आप लीक से हट के काम करते हैं, आपको जो दुनिया कर रही है उसके हट के करना है। अगर दुनिया कहती है कि वैवाहिक जीवन में एक पार्टनर के साथ ही ज़िंदगी बितानी चाहिए, तो राहु ज़रूर उस चीज़ को छेड़ने की कोशिश करेगा। शुक्र मंगल की युति में भी ऐसा बताया गया है कि भाई एडवेंचर के शौकीन होते हैं, जॉय एंड एडवेंचर, मतलब प्लेजर भी चाहते हैं, आनंद भी चाहते हैं और साथ में रोमांचक स्थिति भी चाहते हैं। तो उस रोमांच के लिए, उस एडवेंचर के लिए यू नो बाहर निकलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं शादीशुदा जिंदगी के। इसको कभी आगे भी डिस्कस करेंगे क्योंकि ये अलग ही विषय हो जाएगा। अभी तो अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो मैंने कहा कि शुक्र के साथ मंगल होना, लेकिन किन राशियों में वो मैं बता चुका हूँ, मिथुन है, तुला है, स्कॉर्पियो है, कर्क है, मीन है, यहाँ पे वो ज़्यादा, इवन मेष है, मेष में भी ये ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि मेष राशि काल पुरुष की पहला भाव है, राइट। तो इनको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। एक और ग्रह जिसका नाम अभी तक मैंने नहीं बोला है और वो इसे बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, वो है बुध। बुध बुद्धि का कारक है और बुद्धि अगर शुक्र मंगल के साथ लग जाए या शुक्र के साथ हो और मंगल की राशि में हो या मंगल के साथ हो शुक्र की राशि में हो, ऐसी स्थिति में जातक की सोच कहीं ना कहीं हर विषय को वो सेक्सुअल प्लेजर से, सेक्सुअल टॉक से जोड़ के देखता है। तो उसे हर चीज़ में वो चीज़ें नज़र आती हैं, वो चाहे या ना चाहे। तो ये एक ड्रॉबैक कह सकते हैं या ये खूबी कह सकते हैं जब ये कॉम्बिनेशन होता है। और वही अगर इस पर राहु का प्रभाव है, कुछ ऐसे नक्षत्र भी है जिनमें बैठने पर व्यक्ति में काम इच्छाएं बहुत बढ़ जाती हैं। अब उन फैक्टर्स की बात करते हैं जो इनके ऊपर इसको कम करते हैं, सेक्सुअल अर्ज को कम करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब या इस पॉडकास्ट का उद्देश्य ये है कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र जो पहली स्थिति अभी तक बताई है उसमें हो, तो आप अपने जीवन साथी के चार्ट में भी ऐसे ही कॉम्बिनेशन को ढूंढें। लेकिन अब जिनके बारे में अब मैं बात कर रहा हूँ उनमें काम इच्छाएं कम देखने को मिलती है। वो क्या है? सबसे पहले तो शनि, शनि विरक्ति का कारक है, हालांकि उसे शुक्र का मित्र माना गया है, लेकिन कभी भी आप शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें ये बताया गया है कि यू नो शुक्र यदि शनि की राशि में हो तो वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता। उसका कारण ये है कि आपकी जो इच्छाएँ हैं वो कम होती हैं, या यूँ कहें कि काम इच्छाएं कम होने की वजह से परेशानी आती है। बृहस्पति भी ऐसा ही ग्रह है। बृहस्पति का यू नो शुक्र के साथ होना ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे तो स्थिति कुछ और हो जाती है, लेकिन अगर बृहस्पति लग्न को देख रहा है, सूर्य लग्न को देख रहा है, तो ऐसी स्थिति में जातक सामाजिक प्रतिष्ठा, दुनिया क्या कहेगी, इसको देखना उसको देखना, उसके चक्कर में अपने जो इमोशन है वो एक्सप्रेस नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि चलिए आपका अगर शुक्र मिथुन राशि में है भी, मंगल के साथ है भी, राहु द्वारा दृष्ट भी है, ऐसा अगर कॉम्बिनेशन है तब भी लगन पर अगर गुरु सूर्य है तो व्यक्ति संयम रखने की पूरी पूरी कोशिश करता है कि यार ये पता ना लगे। तो सूर्य हुआ, सूर्य की राशि में शुक्र का बैठना, सूर्य के साथ शुक्र का बैठना आपको लैविश लाइफ तो देता है लेकिन आपकी सेक्सुअल डिज़ायर में, आपकी काम इच्छाओं में कमी कर देता है। इसके साथ साथ शनि की बात कर चुका हूँ। केतु एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है जहाँ पे राहु इस चीज़ को काफ़ी बढ़ाता है, यू नो सेक्सुअल अर्ज को, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को। वहीं शुक्र केतु विरक्ति का कारक माना गया है। यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि हस्बैंड वाइफ में रिलेशन बने काफ़ी दिन हो जाते हैं, काफ़ी महीने हो जाते हैं, कई केसेस में तो यहाँ तक देखने को मिला है। तो इसको नज़रअंदाज मत कीजिएगा। तो अगर आपकी कुंडली में शुक्र उस स्थिति में जो पहली स्थितियाँ बताई और आपके लाइफ पार्टनर की कुंडली में लगन में बृहस्पति है या शनि शुक्र को देख रहा है या शुक्र धनु में है, सिंह में है, तो बहुत अच्छा योग नहीं होता है। तो इन दो चीज़ों को देखेंगे तो आप आपस में कंपैटिबिलिटी बैठा पाएंगे। और बारवा घर जैसे मैंने कहा, कई बार क्या होता है इसको भी समझिएगा कि इसके लिए दूसरे का चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी कुंडली में आपके लगन पर, आपके सप्तम भाव पर और शुक्र पर वो प्रभाव है, मिथुन राशि का, शुक्र मंगल का, राहु का, बुध का, तुला राशि पर है या कर्क पर है, तो आपकी इच्छाएँ तो हैं उस डायरेक्शन में। लेकिन अगर आपका बारवा घर पीड़ित है, बारहवें घर में बृहस्पति केतु मोक्षदायक ग्रह बैठे हैं, तो आपकी वो इच्छाएं पूरी नहीं होने वाली है। अब इच्छाएं क्यों नहीं पूरी होंगी? या तो आपका जीवन साथी आपको ऐसा मिलेगा जो आपको उस तरफ जाने की प्रेरणा नहीं दे रहा है, आपकी इच्छाएं इच्छाएं ही रह जाएंगी, उसको आप क्रियान्वित नहीं कर पाएंगे। दूसरा क्या कारण हो सकता है कि इच्छा होना अलग बात है, शारीरिक रूप से सक्षम होना अलग बात है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। अगर बारहवें घर में शनि का, बृहस्पति का, केतु का, इन ग्रहों का प्रभाव है तो वो आपके बेड लाइफ को, आपके सेक्सुअल लाइफ को इनएक्टिव दिखाती है। और जैसे मैंने कहा इसके कारण कई हो सकते हैं, तो इच्छाएं होना अलग हो गया और कंपिटेंट होना वो अलग बात हो गई। चलिए ऐसे ही और विषयों के ऊपर भी आगे बात करते रहेंगे, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम बात करते हैं। अपना ध्यान रखिएगा और 2021 की एडवांस में शुभकामनाएं, भगवान आपका आने वाला साल बहुत अच्छा रखे। जय श्री राम। उम्मीद है कि ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो, अगर आपका ज्ञानवर्धन हुआ हो तो इस चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप इस ऑडियो शो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं। मिलते हैं अगली बार किसी और विषय के साथ। जय श्री राम।